अध्याय 13 कृषि, भारत में कृषि का विकास, सिंचाई, वन उपवन तथा पशुपालन, दुर्भिक्ष। प्राचीन भारत के विभिन्न युगों में कृषि व्यवस्था। भूमिका। वर्तमान समय में विद्वानों का मत है कि पृथ्वी पर जंतुओं का विकास धीरे धीरे हुआ और इस विकास में करोड़ों साल लग गए। वानर जाति के एक प्राणी से विकसित होते होते मनुष्य की उत्पत्ति हुई और उसे पृथ्वी पर प्रकट हुए अभी कुछ लाख सालों से अधिक समय नहीं हुआ। शुरू में मनुष्यों और अन्य चौपायों में बहुत कम भेद था। अन्य पशुओं के समान वह भी जंगल में रहता था और शिकार द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता था। मनुष्यों के मांस के अतिरिक्त जंगल में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले कंदमूल, फल व अन्य का भी वह भोजन के लिए प्रयोग करता था। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के इस आदि युग के मनुष्य आर्थिक उत्पादन नहीं किया करते थे, अपितु प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं पर ही निर्भर रहते थे। मनुष्य के पास बुद्धि नामक एक ऐसी वस्तु थी जो अन्य प्राणियों के पास नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य शिकार करते केवल अपने हाथों और पैरों पर ही निर्भर नहीं करते थे, अपितु अनेक प्रकार के औजार बनाकर उनका भी उपयोग किया करते थे। प्रारंभ में मनुष्यों के औजार पत्थर, हड्डी और लकड़ी के बने होते थे। धातुओं का प्रयोग वे नहीं जानते थे। पुरातन प्रस्तर युग का काल कई लाख वर्षों का माना जाता है। इस सुदीर्घ काल में मनुष्य धीरे धीरे उन्नति की ओर कदम बढ़ाता गया। शुरू में वह केवल शिकारी था और मोटे व भद्दे औजारों का प्रयोग करता था, पर समय के साथ साथ जहां वह मछली पकड़ने, कंदमूल फल एकत्र करने का प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले अनाज को इकट्ठा करने के लिए प्रवृत्त हुआ, वहां साथ ही उसके औजार भी निरंतर उन्नति करते गए। वह पत्थर के प्रस्कृत औजार बनाने लगा और हड्डी, सींग, लकड़ी, हाथी दांत आदि का भी अपने उपकरणों के लिए प्रयोग करने लगा। शुरू में वह पत्थर फेंककर शिकार करता था, बाद में उसने धनुष बाण बनाए। धनुष के लिए उसने सींग और लकड़ी का प्रयोग किया और बाण के आगे हड्डी, पत्थर व सींग के फलकों को बांधना शुरू किया। मध्य पाषाण युग में कृषि व्यवस्था। इस युग में मनुष्य सभ्यता के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा था। पहले वह जंगल में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले कंद मूल फल अन्न आदि को एकत्र मात करता था, किंतु इस युग में वह उन्हें उत्पन्न करने भी लगा। मनुष्य शिकारी के स्थान पर पशुपालन और कृषक बनने लगा और उसके औजार निरंतर अधिक उन्नत और परस्कृत होते गए। खेती के लिए आवश्यक था कि मनुष्य किसी एक स्थान पर स्थिर होकर रहे, अतः उसने बकायदा मकान बनाने शुरू किए तथा जगह जगह पर उनकी बस्ती का विकास होने लगा। नूतन पाषाण युग में कृषि व्यवस्था। नूतन प्रस्तर युग के मनुष्य को आजीविका के मुख्य साधन कृषि और पशुपालन थे। खेती के लिए वह पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। उसके हल, दराती, कुल्हाड़े, हथौड़े आदि सब उपकरण पत्थर के बने होते थे। शुरू में वह स्वयं को अपने हाथ से जमीन खोदता था, पर समयांतर में उसने यह जान लिया था कि बैलों व घोड़ों का प्रयोग हल चलाने के लिए किया जा सकता है। नूतन प्रस्तर युग के अंतिम दिनों तक मनुष्य न केवल हल के लिए बैलों व घोड़ों का प्रयोग करने लगा था, अपितु गाड़ी चलाने के लिए भी इन पशुओं का उपयोग किया जाने जान गया। उसकी गाड़ियां लकड़ी की बनी होती थी। पत्थर के बने औजारों से वह लकड़ी काटता था और इसी की सहायता से हल, गाड़ी आदि का निर्माण करता था। अब उसके निवास स्थान गुफाएं और खाल के बने तंबू न होकर लकड़ी, पत्थर व मिट्टी के बने मकान हो गए थे। जिन प्रदेशों में लकड़ी, फूस आदि की सुविधा थी, वहां वह लकड़ी के मकान बनाता था। अन्य स्थानों पर कच्ची मिट्टी या पत्थर मकान बनाने के काम में लाए जाते थे। उसके गांव छोटे छोटे होते थे। इस मकानों में अनाज को जमा करने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते थे। अनाज के ये गोदाम कच्ची मिट्टी के बने होते थे। नूतन प्रस्तर युग में व्यापार की भी उन्नति हुई। एक ग्राम में रहने वाला लोग परस्पर अपनी वस्तुओं का विनिमय करते थे। बढ़ई या कुम्हार अपने शिल्प द्वारा तैयार की गई वस्तु के बदले में किसान को बढ़ई या कुम्हार अपने शिल्प द्वारा तैयार की गई वस्तु के बदले में किसान से अनाज प्राप्त करता था। उस युग में वस्तुओं के विनिमय के लिए मुद्रा कोष्टक में सिक्के की आवश्यकता नहीं थी। मुद्रा के अभाव में भी लोग अपनी वस्तुओं का विनिमय करने में समर्थ होते थे। व्यापार का क्षेत्र केवल ग्राम ही नहीं था, सुदूरवर्ती ग्राम आपस में भी व्यापार किया करते थे। यूरोप और पश्चिमी एशिया के भग्नावशेषों में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है जो उस प्रदेश में उत्पन्न ही नहीं हो सकती थी और जिन्हें अवश्य किसी सुदूरवर्ती प्रदेश से व्यापार द्वारा प्राप्त किया गया था। वह विदेशी व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल विशिष्ट वस्तुओं के लिए होता था। वैसे प्रत्येक गांव अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करने का प्रयत्न करता था। धातु युग में कृषि व्यवस्था। नूतन प्रस्तर युग के बाद धातु युग का प्रारंभ हुआ। नूतन प्रस्तर युग का मनुष्य आग का उपयोग करता था और मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए भट्टियों व चूल्हे का निर्माण करता था। ये भट्टियां प्रायः पत्थर की बनी होती थी। अनेक पत्थरों में धातुओं का अंश पर्याप्त मात्रा में होता था। आग के रूप, आग के ताप से ये धातु मिश्रित पत्थर पिघल जाते थे और उनसे चमकीली धातु अलग हो जाती थी। धीरे धीरे मनुष्य ने यह मालूम किया कि धातु औजार बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसे न केवल पिघलाया ही जा सकता है अपितु ठोक पीट कर अभिष्ट आकार में भी लाया जा सकता है। स्वयंभतः सबसे पहले मनुष्य ने सोने का प्रयोग शुरू किया, क्योंकि अनेक स्थलों पर सोना प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता है, पर सोना इतनी अधिक मात्रा में नहीं मिलता था कि उसका उपयोग औजार बनाने के लिए किया जा सके। संभवतः मनुष्य इस धातु का उपयोग केवल आभूषण बनाने के लिए ही करता था, पर समयांतर में उसे तांबे, ब्रोंज और लोहे का ज्ञान हुआ और इन धातुओं का प्रयोग उसने औजार बनाने के लिए शुरू किया। उत्तरी भारत में तांबे के और दक्षिणी भारत में लोहे के औजार बनाए जाने लगे। पश्चिमी भारत के कुछ प्रदेशों सुंधी और बिलोचिस्तान में तांबे से पहले ब्रोंज का प्रयोग हुआ। ब्रोंज एक मिश्रित धातु होती है जो तांबे और टिन के मिश्रण से बनती है। न केवल सिंधु और बिलोचिस्तान में अपितु पाश्चात्य संसार के भी अनेक देशों में मनुष्य ने तांबे से ब्रोंज का उपयोग शुरू किया था। इसी कारण नूतन प्रस्तर युग के बाद मानव सभ्यता का जो युग शुरू हुआ उसे ब्रोंज युग कहते हैं। धातु का उपयोग शुरू होने से मनुष्य की सभ्यता में कोई आकस्मिक व महान परिवर्तन नहीं आ गया। जो काम पहले मनुष्य पत्थर के औजारों से करता था वही अब धातु के औजारों से होने लगा। धातु के बने औजार पत्थर के औजारों की अपेक्षा अधिक सुडौल या उपयोगी होते थे और मनुष्य उनकी सहायता से कृषि व शिल्प को अधिक अच्छी तरह से कर सकता था। धातु युग में कृषि, शिल्प आदि का अनुसरण अब मनुष्य के लिए अधिक सुगम हो गया और वह धातु के बने उपकरणों से मनुष्य अपना कार्य अधिक अच्छी तरह से करने लगा। इस युग में मनुष्य बस्तियों में रहने लगा, मकान बनाने लगा तथा कृषि और पशुपालन के द्वारा अपना निर्वाह करने लगा। यह सैंधव युगीन कृषि व्यवस्था। सैंधव काल में कृषि उन्नत दशा में थी। यहाँ के लोगों का मुख्य उद्यम कृषि था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा आदि की खुदाई में पाषाण निर्मित अनेक शिलाएं प्राप्त हुई हैं, जिनसे कृषि के प्रचलन की संपुष्टि होती है। पर्याप्त रूप में जल मिल जाने के कारण सिंधु निवासी चावल की खेती भी सुगमता पूर्वक करते थे। इसके अतिरिक्त वे मटर और तिल की भी खेती करते थे। मोहनजोदड़ो ने सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि उस प्रदेश में कपास की भी खेती होती थी। हड़प्पा से प्राप्त एक मित्र प्राप्त की आकृति एक नारियल की भांति है। दूसरे पात्रों पर केला, खजूर और अनार की आकृतियां बनी है। इस आधार पर विद्वानों की धारणा है कि कदाचित सिंधु निवासी इन फलों की खेती करते थे। यह विकसित सभ्यता इस बात का प्रमाण है कि यदि लोगों में आर्थिक विचार विकसित ना होते तो कृषि उत्पादन और नगर जीवन पर आधारित सिंधु सभ्यता का विकास कैसे होता। फसलों को उगाने में पानी एवं अनुकूल वातावरण तथा वायुमंडल की आवश्यकता होती है, इसका भी उन्हें भली भांति ज्ञान था। उत्खनन में गेहूं तथा बाजरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार लोथल में चावल भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त मटर एवं तिल की खेती के साथ खजूर, फल एवं सब्जी की भी खेती की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में कृषि। ऋग्वैदिक काल में कृषि इसका मुख्य धंधा था और इस समय कृषि का काफी विकास हो चुका था। भूमि को जोतने के लिए हलों का प्रयोग किया जाता था जिन्हें बैल खींचते थे और तत्पश्चात जोते हुए खेत में बीज बोया जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में हसिये द्वारा पके हुए अनाज को काटकर छोटे छोटे गट्ठों के रूप में संग्रह करने के पश्चात अन्न संग्रहालय में लाने का वर्णन किया गया है, जहां उसे कूट पीस कर वायु के द्वारा अलग किया जाता था। इसी तरह अनाज के तिनकों को अलग करने वाला व्यक्ति धनाकृत कहा जाता था तथा अन्न की तोल उर्वर नाम के पात्र से होती थी, इसका उल्लेख भी हुआ है। खेती योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेम कहा जाता था। घर के सभी स्त्री पुरुष और बालक किसी कार्य में व्यस्त रहते थे और छोटे बालक पशु चराते थे। इस काल की मुख्य पैदावार गेहूं और जौ थी। जिस प्रकार आजकल गांव में खेती के विभिन्न विभिन्न कार्यों जैसे मांडना, खेत काटना, खेत निराना आदि प्रचलित है, उसी तरह ऋग्वेद काल में भी प्रचलित हो गया था। खेत की सिंचाई के लिए नलकूप एवं नहरों का प्रयोग किया जाता था। वह अनाज को यव के नाम से पुकारते थे। कृषि के हेतु बैल की अत्यंत आवश्यकता थी। इनको संपत्ति के रूप में माना जाता था। नंबर 6, उत्तर वैदिक काल में कृषि। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न ग्रंथों से ज्ञात होता है कि हल में 14 बैल जोते जाते थे। काठक संहिता में इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। छत्पद ब्राह्मण में कृषि कार्यों जुताई, बुआई और मड़ाई का उल्लेख हुआ है। खेती की उपज बढ़ाने के लिए खाद का प्रयोग होता था। जगह जगह पर गोहर कोष्टक में सखित करोस का उल्लेख हुआ है। वर्ष में 2 फसलें होती थी। धान वर्षा ऋतु में बोया जाता था और शीतकाल में पक जाता था। इस प्रकार जौ, धान, गेहूं, तिल, उड़द, मूंग, मसूर आदि की खेती व्यापक मात्रा में होती थी। फसलों का समय निश्चित हो गया था और उन्हें विधिवत काटा जाता था। उत्तर वैदिक काल में कृषकों को ओले, अतिवृष्टि आदि और दैविक विपत्तियों का सामना करना पड़ता था। पशु, पक्षियों, टिड्डियों और चूहों से भी उन्हें कृषि की रक्षा करनी होती थी। कृषि योग्य भूमि व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति समझी जाती थी। सूत्र और बौद्ध युगीन कृषि व्यवस्था। 620 ईसा पूर्व और 320 ईसा के मध्य कृषि। पाणिनि ने कृषि तथा कृषि बल शब्दों का प्रयोग किया है, जिसका आशय अलग अलग है। कृषि से तात्पर्य खेती से संबंधित समस्त कार्यों एवं क्रियाकलापों से लिया गया है, जबकि कृषि बल का अर्थ कृषक से है। पाणिनि के अनुसार किसानों को 3 भागों में बांट सकते हैं। आ, अर, हली। इसके अंतर्गत वे किसान आते थे जिनके पास अपना हल होता था। इस प्रकार पाणिनि ने हल को ही कृषि बल का अधिकार माना है। हल बैलों द्वारा चलाया जाता था, इसलिए ऐसे बैलों को हालिक अथवा सैरिक नाम से संबोधित किया गया है। उनके अनुसार कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। बा, सोहली। इसके अंतर्गत वे किसान आते हैं जिनके पास कुछ अच्छे प्रकार का हल होता था। सा, दुरहली। इसके अंतर्गत वे किसान आते थे जिनके पास बहुत निम्न प्रकार का हल होता था। अष्टाध्यायी में 2 प्रकार की फसलों का उल्लेख हुआ है। का, अकिष्ट पाच्या। उस उपज को कहते हैं जो बिना परिश्रम के उत्पन्न होती है। खा, कुष्ठ पाच्या। उस उपज को कहते हैं जो परिश्रम से उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत साली, प्रीही, व्यव, मांस, मधुरा, कुथल, तिल, नीली, मंजिष्ट, तूल, उमा, उड़ा आदि उल्लेखनीय है। ये अन्य 2 प्रमुख फसलों से उत्पन्न होते थे। नंबर 1, अश्व पूजक। यह अत्र आश्विन में बोया जाता था। नंबर 2, वासंतक, जो अन्न बसंत में बोया जाता था। अष्टधाई में परित युग वस्त्रा तथा उदचन शब्दों से ऐसा आभास होता है कि खेतों की सिंचाई के उद्देश्य से कूपों का प्रयोग किया जाता था। कृषि हल और बैलों की सहायता से की जाती थी। तत्कालीन किसी व्यवस्था के अनुसार सर्वप्रथम खेतों को जोता जाता था, उसमें बीज डाले जाते थे। इसके बाद फसल पक जाने पर काट लिया जाता था और खलिहान में ले जाकर अन्न और भूसा अलग कर लिया जाता था। तदंतर अनाज अन्न संग्रहालयों में भेज दिया जाता था। उस समय उत्पादित अन्य पदार्थों में सालित, गोधूम, मांस, यव और बाजरा है। चना, मटर, मूंग, उड़द विशेष उल्लेखनीय है। धान की खेती अधिक मात्रा में की जाती थी। इसके अतिरिक्त ईख तथा नारियल की खेती बहुत मात्रा में की जाती थी। जातक ग्रंथों में नाना प्रकार के मसाले, मिर्च, गीली और सूखी अदरक, लहसुन जीरा एवं पिंडली के उत्पादन पर प्रकाश डाला गया है। बंदोपाध्याय के अनुसार उस समय रेशम और कपास की खेती अधिक मात्रा में की जाती थी। बौद्धिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण भी किसी कार्य में संलग्न थे। धनवान कृषक मजदूरों से किसी कार्य करवाने लगे थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार गरीब कृषकों को राजाओं के मदों से सहायता दी जाती थी, जिससे कृषि का अधिक विकास हो। भूमि बटाई पर दी जाती थी। जैन साहित्य से भी प्राचीन भारत की कृषि व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कृषि कार्य हेतु हल प्रयोग किए जाते थे, जिसे कुलीप तथा नंगल नाम से जाना जाता था। कभी कभी संपन्न भूमिपतियों के खेत में अनेक हलों का प्रयुक्त किया जाता था। खेत को खोदने के लिए कुदाल, अनाज काटने के लिए असियही तथा अनाज साफ करने के लिए तुपकत्तर का प्रयोग किया जाता था। तत्पश्चात अनाज समाह पल्लक कुंभी मुख अचार आदि विभिन्न संग्रहालयों में एकत्रित किया जाता था। आगम ग्रंथ में स्थान के आधार पर तीन प्रकार की फसलों का उल्लेख किया गया है। नंबर एक आटविक, जनपद में उत्पन्न होने वाली उपज को आटविक कहते थे। नंबर दो क्षैत्रिक, कृषि में उत्पन्न होने वाली उपज को क्षैत्रिक कहते थे। यह भूमि दो प्रकार की होती थी। नंबर आ सेतु, जिसमें कृषि कृत्रिम सहायता से की जाती थी। बा केतु, जिसमें खेती जल वर्षा पर आधारित थी। नंबर तीन आरामिक, उद्यानों में उत्पन्न होने वाली उपज को आरामिक कहते थे। मौर्य एवं कुषाण युगीन कृषि व्यवस्था, मौर्य युगीन कृषि व्यवस्था का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत रूप से है। इस समय लोगों का प्रमुख उद्यम कृषि था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो प्रकार की भूमि का उल्लेख है। नंबर एक व्यक्तिगत भूमि, इसके अंतर्गत वह भूमि आती थी जिस पर जनता का अधिकार होता था। नंबर दो राजकीय भूमि, इसके अंतर्गत वह भूमि आती थी जिस पर राज्य द्वारा कृषि कार्य करवाया जाता था। मौर्य काल में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका प्रधान सीता अध्यक्ष होता था। उसका मुख्य कार्य कृषि की उन्नति करना था, इसलिए उसको कृषि शास्त्र, शुल्य शास्त्र, कोष्टक में पैमाइश और वृक्ष विज्ञान का पूरा ज्ञान अर्जित करने को कहा गया है। ऐसा भी निर्देश है कि वह इन सभी विधाओं के विशेषज्ञों को अपना सहायक बनाकर यथा आम, फल, फूल, साग, कंदमूल, जन, जूट और कपास आदि के बीजों का संग्रह करे। उन संग्रह किए गए हुए बीजों को वह कृत दासों, नौकरों और साफ परिश्रम सजा याफ्ता कैदियों के द्वारा ऐसी भूमि में बुआए जो कई बार जोती गई हो। कौटिल्य ने लिखा है कि यदि कारीगरों तथा बढ़ई आदि कर्मचारियों से खेती आदि में कोई नुकसान हो तो उसकी हानि उन्हीं से पूरी की जाए। उन्होंने कृषि संबंधी यह सम्मान व्यक्त की है कि वर्षा के अनुपात से यदि एक हिस्सा श्रावण कार्तिक में और दो हिस्सा भाद्रपद अश्विन में पानी बरसे तो वह वर्ष फसल के लाभदायी समझना चाहिए। यदि सूर्य के चारों ओर मंडल पड़ा हो तो अनाज के अच्छे दान का अनुमान करना चाहिए। इस युग में राजा का मुख्य व्यवसाय था कि वह कृषि की उत्पादकता को विकसित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त जन समूह को नवीन या त्याज भूमि में पुनर्वास के लिए प्रोत्साहित करे। इसी संदर्भ में कौटिल्य ने अधिकाधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने पर बल दिया है। जिस भूमि में अन्न आदि उत्पन्न नहीं हो सकता उसका नाम भूमि छिद्र है। उन्होंने वर्षा के अनुपात से ही बीज बोने की बात कही है। साठी या धान कोष्टक में साली, गेहूं जौ जवार कोष्टक में प्रीही, कोदो तिल कांगनी कोष्टक में प्रियंगु और लोबिया आदि की वर्षा शुरू होने के पहले ही बो देना चाहिए। मूंग उड़द और छीमी आदि को वर्षा के मध्य में बोना चाहिए। कुसुम्बी मसूर कुत्थी जौ मटर अलसी और सरसों आदि अनाजों को वर्षा के अंत में बोना चाहिए। कौटिल्य ने सीता अध्यक्ष के लिए अन्य कृषि संबंधी वह नियम निर्दिष्ट करते हुए कहा है कि जो खेत बिना बोए पड़े हो उन्हें वह आधी बटाई पर दूसरे किसानों को बोने के लिए दे दे, अथवा जो लोग शारीरिक श्रम पर जीवित हैं उनको वह जमीन दे दी जाए और उस जमीन की पैदावार का चौथा व पांचवा भाग उन्हें दे दिया जाए या स्वामी की इच्छा अनुसार ही उनको दिया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अपने धन और बाहुबल से बनाए गए तालाबों से यदि सिंचाई की जाए तो उपज का पांचवा हिस्सा राजा को देना चाहिए। अपने कंधे पर लादकर यदि वह खेतों की सिंचाई करता है तो उसे चौथाई हिस्सा राजा को देना चाहिए। यदि वह नहर व नालियां बनाकर खेतों को सींचता है तो उसे पैदावार का तीसरा हिस्सा देना चाहिए। कौटिल्य ने कृषि संबंधी कुछ अल्प नियम भी बताए हैं। ठीक समय पर हुई फसल को सुरक्षित स्थान में रखना चाहिए। पुआल और भूसा आदि आसार वस्तुओं को भी उठा ले जाना चाहिए। अनाज को रखने का स्थान प्रकार कुछ ऊंची जगह पर बनवाना चाहिए। उसी प्रकार के मजबूत तथा घिरे हुए अन्नागरों को बनवाना चाहिए। कटे हुए अनाज को रखने की जगह खलिहान और दाई लेने की जगह मंडल को आसपास होने चाहिए। गुप्त काल से वर्धन काल तक कृषि व्यवस्था। इस युग में कृषि की दशा उन्नत थी। इसका कारण यह था कि शासन काल में आंतरिक एवं बाह्य शांति एवं सुव्यवस्था थी। ऐसे परिवेश में कृषि जैसे आर्थिक उद्यम के विकास के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई। कालिदास ने जिस कृषि व्यवस्था का उल्लेख किया है वह वैज्ञानिकता तो नहीं किंतु साधन संपन्न अवश्य थी। उन्होंने कृषि की विधाओं का स्पष्ट उल्लेख किया है। इस समय कृषि सर्वोत्तम वृत्ति माना जाता था। मनु ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि राजा वैश्य से खेती वाणिज्य आदि कराए। इस युग में भूमि की उपज का चौथा आठवां या बारहवां अंश राज्य का होता था। राजा का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि दंड का भय दिखाकर लोगों को कृषि करने पर बाध्य करे। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि राज्य की ओर से कृषि कार्य पर ध्यान दिया गया था। इस निमित्त स्कंदगुप्त के स्थानीय गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। मनु ने फिर सिंचाई के साधनों को नष्ट करने वाले के लिए कठोर नियम निर्दिष्ट करते हुए कहा है, तालाब को किसी प्रकार से नष्ट करने वालों को जल में डुबोकर मार डाले अथवा कोई कड़ा दंड दे। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय किसी की उत्पादकता में वृद्धि होती, वृद्धि हेतु अधिक प्रयत्नशील रहते थे। मनु ने तो बीजों में मिलावट करना पाप बताया गया है। तत्कालीन साहित्य में कृषि मनु ने तो बीजों में मिलावट करने वाले को दंड का विधान बतलाया है। विष्णु पुराण में जोते हुए खेतों में मूत्रोत्सर्ग करना पाप बताया गया है। तत्कालीन साहित्य में कृषि संबंधी उपकरणों की और भी ध्यान दिया गया है। कालिदास ने रघुवंश में अनेक प्रकार की फसलों का उल्लेख किया है। बृहत संहिता में दो प्रकार की ग्रीष्मकालीन एवं शरदकालीन फसलों का उल्लेख किया गया है। उस समय धान, गेहूं, बजरी, मटर, दाल, तिल, सरसों और अलसी, अदरक, काली मिर्च तथा मसाले एवं विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां आदि उत्पन्न की जाती थी। कालिदास ने लिखा है कि सिंधु नदी के किनारे केसर की तथा मलय पहाड़ी पर काली मिर्च, इलायची एवं चंदन की पैदावार होती थी। वैसे अमरकोश में केसर का उपज स्थान कश्मीर एवं चंदन का मलय कावेरी के नीचे स्थित बताया गया है। वराहमीर ने भूमि तैयार करने, एक वृक्ष की शाखा दूसरे वृक्ष पर कलम बंद करने, ठीक मौसम में वृक्षों के पानी स्थान और उनकी बीमारियों के उपचार तथा उनके फल उत्पन्न करने का विस्तृत वर्णन किया है। वायु एवं अग्नि प्राण में उस अतीत का उल्लेख किया गया है जबकि अनाज स्वाभाविक रूप में कृषि आदि की योजना बिना ही प्राप्त होते थे। हेंसांग की यात्रा विवरण से ज्ञात होता है कि कश्मीर फल फूल के उत्पादन के लिए उदयन अंगूर तथा सुगंधित मदिरा के लिए विख्यात है। इससे तत्कालीन युग की कृषि व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। पूर्व मध्ययुगीन कृषि व्यवस्था। इस युग में कृषि व्यवस्था में भूमि का विभाजन उनके लक्षणों के आधार पर किया गया, यथा उर्वरा झरिड़ कोष्टक में बंजीर, इरिड कोष्टक में बंजर, खिल परती मरुद रेतीली, मित्स्या उच्च, सडबल और नडबल, काली मिट्टी एवं पीली मिट्टी, नवी एवं दसवीं सदी के अरब लेखकों ने भी पश्चिमी भारत की अन्न तथा फल उत्पन्न करने वाली उर्वरा भूमि का वर्णन किया है। मेधातिथि ने 17 प्रकार के अन्नों का उल्लेख किया है। मुसलमान लेखकों ने चावल को प्रमुख भोज पदार्थ बताया है। मानसोल्लास में चावल के 8 प्रकार की गणना की गई है। इसी ग्रंथ में अन्यत 7 प्रकार की दालों यथा राजदुग निष्पाव चना काली अरहर मसूर तथा राजा भोज का उल्लेख मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि लोग अनेक प्रकार के अन्नों का प्रयोग करते थे। या गोल की स्मृति की टीका तथा मानसोल्लास के अनुसार क्रमशः मगध तथा कलिंग चावल की उपज के लिए विख्यात था। विदेशी लेखकों मार्को पोलो ईद्रिसी याकूत काजवीनी ने भारत की पैदावार का उल्लेख करते हुए यह मत व्यक्त किया है कि गुजरात में कपास तिल बांस तथा खजूर मालाबार में काली मिर्च एवं इलायची मलय में चंदन तथा दक्षिण में अदरक और दालचीनी का उत्पादन किया जाता था। कथा सरित सागर में वर्णित है कि घर के सन्निकट साग वाटिका होती थी जिसमें लोग अपने दैनिक उपयोग की साग सब्जी की पैदावार करते थे। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में विभिन्न युगों में कृषि का काफी विकास हुआ था। भारत में कृषि का विकास। प्राचीन भारत में सिंचाई व्यवस्था, प्राचीन भारत में कृषि व्यवस्था, प्राचीन भारत में वन उपवन तथा पशुपालन। विद्वानों के अनुसार सबसे पहले गेहूं की खेती के अवशेष मुंडीगक से मिले हैं। यह स्थान अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। भारत में खाद्य उत्पादन का सबसे पहला निश्चित साक्ष्य ईसा पूर्व 5000 के आसपास उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बलूचिस्तान से मिलता है। इस संबंध में हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कृषि की किसी भी फसल की पूर्वज वन नवपाषाण युग में गेहूं। नवपाषाण युग में गेहूं वन किस्म की हो खेती के योग्य बनाया गया। सिंधु और बलूचिस्तान की सीमा पर बोलना नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान से पहला स्पष्ट कृषि का साक्ष्य मिला है। यहाँ ईसा पूर्व 5000 के स्तर पर किसी जन गेहूं और जौ की विभिन्न किस्में मिली हैं, परंतु इस स्तर के नीचे बहुत सारा निक्षेप पड़ा है जिसका उत्खनन नहीं हुआ है। इसलिए विद्वान किसी उत्पाद का प्रारंभ ईसा पूर्व 7वीं सहस्राब्दी में मानते हैं। राजस्थान में किसी उत्पादन होने का प्रारंभ 8वीं व 7वीं सहस्राब्दी में होने का कुछ साक्ष्य मिला है। संभवतः कश्मीर में ईसा पूर्व 25 के आसपास बुर्ज होम में गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में कोल दिहवा नामक स्थान से वन्य और किसी जन दोनों प्रकार का चावल मिला है। इसका समय ईसा पूर्व 6 तथा 5वीं सहस्राब्दी निश्चित किया गया है। दक्षिण भारत में कृषि जन बाजारे की एक ऐसी किस्म मिली है जो इस ईसा पूर्व 3 सहस्राब्दी की है। उपयुक्त प्रातात्विक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि भारत के विभिन्न भागों में खाद्य उत्पादन का प्रारंभ नवपाषाण युग में विभिन्न कालों में हुआ।